ये आकाशवाणी है। अब आप प्रशांत कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वे भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेकिंग ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान 100 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें 3.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए देहरादून भी जाएंगे। यह खेल उत्तराखंड में राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के दौरान आयोजित किया जा रहा है। भारत और चीन ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। विदेश सचिव उपमंत्री प्रणाली मौजूदा समझौतों के अनुसार इस विषय पर चर्चा करेगी। दोनों पक्ष जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के प्रावधान और सीमा पार नदियों से संबंधित सहयोग के अन्य क्षेत्रों को फिर से शुरू करने और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भी सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका परस्पर लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देश लोगों के कल्याण, वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराने से देश के लिए किए कार्यों की गति में बाधा आती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विकास में युवाओं के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में युवाओं ने 150,000 से अधिक स्टार्टअप शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और छात्रवृत्ति मिलने को सुगम बनाने से युवाओं को नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिली है। एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी ने निरंतर युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में वेब्स बाजार, वह उस्ताद चैलेंज और वेब्स अवार्ड्स का शुभारंभ किया। उन्होंने वेब्स 2025 के तहत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को आमंत्रित करते हुए क्रिएटिंग इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भी शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय विरासत और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था की तरह महत्व प्राप्त हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले एक विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार केंद्रीय बजट से संबंधित विशेषज्ञों और लोगों की उम्मीदों को सामने ला रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपनी अपेक्षाएं साझा की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दोषी संजय राय की मौत की सजा पर पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति देवांशु बशाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने की। नेपाल में पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछानी को सहकारी संघ धोखाधड़ी मामले में रूपनदेही के जिला न्यायालय ने 1 करोड़ नेपाली रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की है। लामिछाने बुटवल स्थित सुप्रीम कोऑपरेटिव में धोखाधड़ी के रूप में आरोपी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की इस श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना चुका है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से और दूसरे मैच में 2 विकेट से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।